अनोखी है अनमोल है सपनों में ले जाएंगी ढेर सारी कहानियाँ अब नानी हमें सुनाएंगी
क्योंकि
ये है नानी की कहानियाँ क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ।
नानी आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाओगी?
बच्चों आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़े जादूगर की कहानी सुनाऊंगी जो अपने जादू से कुछ भी कर सकता था।
वाओ नानी जादू की कहानी।
एक बहुत ही सुंदर गांव था, वहाँ के सभी लोग बहुत प्यार और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। उसने गांव के सभी लोगों को एक बड़े से मैदान में अपना जादू देखने के लिए बुलाया। जब गांव के सभी लोग उसका जादू देखने के लिए इकट्ठे हुए तब उस जादूगर ने सबसे कहा, आज तुम सभी लोग जिस मैदान में खड़े हो वहां मैं जादू से अपना आलीशान महल बनाऊंगा। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा। ओ ओ ओ शैतानी शक्ति, करता हूँ मैं तेरी भक्ति, बना दे मेरा महल यहाँ, हो गई है अब ये मेरी धरती। उसके ऐसे कहते ही लोगों के मकान टूटने लगे और उनके मकानों के ईंटों और पत्थरों से उसका सुंदर सा महल बनता गया। कई लोगों ने ये देखकर जादूगर से लड़ाई की, मगर वो क्रूर जादूगर उन्हें अपनी शक्तियों से पत्थरों और जानवरों में बदल देता, किसी को सांप बना देता तो किसी को छिपकली। जादूगर की शक्तियां देखकर सभी लोग उससे डरने लगे। कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि जादूगर को गांव में क्या चल रहा है इसकी खबर कोई देता रहता था।
कौन नानी, कौन बताता था जादूगर को गांव के बारे में?
जादूगर की जादुई टीवी।
टीवी?
हाँ बच्चों टीवी। वो अपनी जादुई टीवी पर गांव को अपने महल में बैठे बैठे देख सकता था। और जब कोई इंसान उसका विरोध करने के लिए लोगों को भड़काता था वो उसे जानवर बना देता था। एक दिन उसने अपने मनोरंजन के लिए गांव में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई शेर के साथ लड़कर उसे मार गिराएगा वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। और फिर जब ये बात अकबर और अस्कर दो भाइयों को पता चली तो उन्होंने शेर से लड़ने का फैसला लिया ताकि वो शेर को मारकर जादूगर को गांव छोड़कर जाने के लिए कह दे।
मगर नानी शेर तो बहुत ताकतवर होते हैं।
हाँ बच्चों शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उन दोनों भाइयों ने अपनी बुद्धि से शेर को मार गिराया। ये देखकर जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने अकबर और अस्कर से कहा कि मांगो क्या मांगते हो। और फिर अकबर ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि तुम हमारा गांव छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर जादूगर क्रोधित हो गया और उसने दोनों भाइयों को शेर बना दिया और उन्हें जंजीरों से बांधकर पिंजरे में बंद करवा दिया। उसने उसी रात जादुई टीवी पर यह ऐलान करवाया कि गांव के सभी लोग उसके गुलाम हैं और वो गांव छोड़कर कभी नहीं जाएगा। बच्चों अकबर और अस्कर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मेहनती लड़का था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने बाबा के काम में भी हाथ बटवाता था। राजू के दिल में जालिम जादूगर के लिए नफरत का जहर भरा हुआ था। उसके दिल में हर समय एक ही इच्छा जन्म लेती थी कि वो किसी भी तरह जालिम जादूगर के टुकड़े टुकड़े कर दे और अपने जैसे गरीबों को उसके जुल्म से आजाद करवा दे। दिन ब दिन जादूगर के जुल्म बढ़ते चले गए। गांव के लोग जितना भी अनाज उगाते उसमें से ज्यादातर जादूगर लूट लेता। जिसके कारण लोगों को भूखा भी रहना पड़ता था। गांव वालों पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर राजू से रहा नहीं गया। उसने सभी को इकट्ठा करके जादूगर से लड़ने का मन बना लिया। मगर अपनी जादुई टीवी के जरिए जादूगर को इस बात का पता चल गया। उसने फौरन अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि वो जाएं और राजू को बंदी बनाकर उसके सामने पेश करें। राजू के दरबार में आते ही जादूगर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया, राजू को भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाए। राजू को जैसे ही पिंजरे में डाला गया, दोनों शेरों ने उसे गले से लगा लिया।
ऐसे कैसे हुआ नानी? शेर उसे कैसे जानते थे?
बच्चों, ये दोनों राजू के दोस्त थे, अकबर और अस्कर, जिन्हें जादूगर ने शेर बना दिया था, याद है ना?
वाव नानी, तीनों दोस्त मिल गए, अब तो जादूगर को मार गिराएंगे।
नहीं बच्चों, जादूगर को मारना इतना आसान नहीं था। उसे जैसे ही पता चला कि शेरों ने उसे खाया नहीं, तो उसने राजू को मरने के लिए सांपों से भरे कमरे में डाल दिया। राजू ने सच्चे मन से अपने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी रक्षा करे। ऐसा करने के बाद राजू के आसपास आ रहे सभी सांप रुक गए और किसी ने भी राजू को नहीं काटा।
वाव नानी, राजू की प्रार्थना भगवान ने सुन ली।
हाँ बच्चों, सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है।
फिर क्या हुआ नानी?
फिर जादुई टीवी ने जादूगर को ये बात बताई कि राजू सांपों से भी बच गया है। ये सुनकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने जादुई टीवी को ये आदेश दिया कि वो अभी गांव में जाए और सभी को ये बात बता दे कि आज रात को जादूगर राजू के लिए एक ऐसी सजा सुनाएगा जिसे सुनने के बाद सभी लोगों की रूह कांप जाएगी और फिर कोई दोबारा उसके विरुद्ध जाने की सोचेगा भी नहीं, और अगर उसके आदेश के बिना कोई सोया तो उसका भी वही हाल होगा जो राजू का होने वाला है। जादुई टीवी से जादूगर का ये आदेश सुनकर सभी लोग बहुत डर गए और उस रात गांव में किसी ने सोने की हिम्मत नहीं की। रात के 3 बजे जादुई टीवी पर जादूगर आया और उसने कहा, मैंने राजू को शेर से मरवाना चाहा, मगर शेर उसके दोस्त निकले। फिर मैंने उसे सांपों से कटवाना चाहा, मगर सांपों ने भी उसे कुछ नहीं किया। इसलिए ये देखकर मैं राजू को कल सुबह रिहा कर दूंगा और उसके माँ बाबा को बंदी बना लूंगा और उन्हें काले पहाड़ों में चुनवा दूंगा। राजू के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होगी कि उसकी गलती की सजा उसके माँ बाबा को मिली। इतना कहकर वो और उसकी जादुई टीवी गायब हो जाती है। अगली सुबह राजू को रिहा कर दिया जाता है और उसके माँ बाबा को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें काले पहाड़ों में पत्थरों में चुनवा दिया जाता है। बेचारा राजू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद राजू को एक आवाज सुनाई देती है।
कैसी आवाज नानी?
एक बूढ़े बाबा की आवाज जो कहते हैं, उठो बेटा, उठो, तुम्हारी हिम्मत देखकर भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उस जुल्मी जादूगर को खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजू उनसे कहता है कि वो जादूगर को मारने से पहले अपने माँ बाबा को बचाना चाहता है। बूढ़े बाबा उससे कहते हैं कि उसके माँ बाबा सुरक्षित हैं। मगर वो उनसे तभी मिल पाएगा जब वो 30 दिनों के अंदर अंदर जादूगर का खात्मा कर दे। बूढ़े बाबा उसे बताते हैं कि इस जादूगर की जिंदगी एक सांप में बसी है, मगर उस सांप तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। और तो और, यहाँ से तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना होगा, जहाँ तुम्हें एक खतरनाक जंगल से गुजरना होगा, बहुत से शैतानों से लड़ना होगा और मगरमच्छ के पेट में घुसकर उसका पेट चीरकर बाहर निकलना होगा।
ओ नानी, ये सफर तो बहुत ही मुश्किल है।
हाँ बच्चों, मगर अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए किसी सफर पर निकलते हो तो भगवान आपका हमेशा साथ देता है। इसीलिए राजू बिना डरे इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और जब जादूगर को ये बात पता चलती है, तब वो ये बात सोचकर उसको नजरअंदाज कर देता है कि एक बच्चा उस सांप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिसमें उसकी जिंदगी कैद है। राजू अपने सफर पर टिका हुआ था। कितने ही सूरज उठे और कितने ही सूरज डूबे, राजू बिना रुके भागता रहा। जालिम जादूगर एक लम्हे के लिए भी राजू से बेखबर रहना नहीं चाहता था। वो हर समय अपनी टीवी पर राजू की खबर रखता था। एक दिन उसने जादुई टीवी पर देखा कि राजू भागते हुए एक घने जंगल की तरफ जा रहा है। उसने तुरंत अपने जादू से वहां बहुत से जंगली जानवर भेज दिए ताकि वो राजू को खा जाए। राजू ने जब जंगल के सारे जानवरों को उसकी तरफ आते हुए देखा तो भागकर एक बहुत बड़े पेड़ की डाल में छुपने की कोशिश करने लगा। जैसे ही डरता हुआ राजू पेड़ों की शाखों से लगा, पेड़ों की सारी शाखों ने राजू को जकड़ना शुरू कर दिया और राजू सर से लेकर पांव तक शाखों में छुप गया। और जब जानवर दूर चले गए तो पेड़ों की शाखें खुद से ही खुल गई। राजू ने पेड़ों को शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने लगा। कई दिनों तक जंगल में भागने के बाद राजू के सामने अब एक बड़ा सा समुद्र था और वो सोच ही रहा था कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए कि उसे एक छोटी सी नाव दिखी। वो उस नाव में बैठा और समुद्र के सफर में निकल गया। कई दिनों तक वो समुद्र में सफर करता रहा और जब उसे दूर से किनारा दिखने लगा तभी समुद्र में तेज तूफान आया और उसकी नाव टूट गई। वो पानी में जा गिरा जहां एक मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा था।
अब तो राजू नहीं बच पाएगा नानी, वो मगरमच्छ उसे खा लेगा।
हाँ बच्चों, ऐसा ही हुआ। मगरमच्छ ने उसे खा लिया, मगर राजू उस मगरमच्छ का पेट फाड़ कर बाहर आ गया और उसने किनारे की तरफ तैरना चालू किया। राजू किसी तरह किनारे तक पहुंच तो गया मगर थकान के कारण बेचारा बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वहां दो आदमी आए। वो राजू को देखकर बहुत खुश हुए।
क्या वो राजू को जानती थी नानी?
नहीं बच्चों।
फिर वो राजू को देखकर खुश क्यों हुए?
क्योंकि वो राजू के ही जैसे किसी बालक की तलाश में निकले थे। वो नाग कबीले के लोग थे और उनके कबीले की ये प्रथा थी कि हर साल वो अपने नाग देवता को किसी बालक की बलि चढ़ाएंगे।
ओ नो नानी, राजू तो एक नई मुसीबत में फंस गया।
अरे सुनो, कबीले में एक नेक दिल औरत भी थी जिसने राजू की बलि देने से साफ इनकार कर दिया था, मगर कबीले वाले उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं हुए। जब राजू को होश आया तब वो उसी औरत के घर में था। राजू ने होश में आते ही वहां से जाना चाहा, मगर उस औरत ने उसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा। जब राजू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने जल्दी जाने का कारण बताया तब उस नेक दिल औरत ने राजू की वहां से भागने में मदद की और इसी तरह राजू कबीले वालों से बचकर वहां से भागने में कामयाब हो पाया। और वहां जादू की टीवी जादूगर को राजू के सफर के बारे में पल पल की जानकारी देती रही। जैसे जैसे राजू अपने सफर में आगे बढ़ रहा था, जादूगर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जादूगर को पूरा विश्वास था कि आगे सफेद पहाड़ों के सफर में राजू जरूर दम तोड़ देगा।
सफेद पहाड़ों का सफर इतना मुश्किल क्यों था नानी?
क्योंकि बच्चों, इस सफर में दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े सफेद पहाड़ थे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था।
फिर क्या होता नानी?
राजू अपना सफर जारी रखता है। वो एक पहाड़ पार करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे राजू बहुत से पहाड़ पार कर देता है। मगर पहाड़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पर अब राजू थक चुका था और ऐसी थकान और कमजोरी के कारण एक पहाड़ पर चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कता हुआ पहाड़ से गिर जाता है। राजू जमीन पर पड़ा हुआ है, पानी के लिए आवाज लगा रहा है, मगर दूर दूर तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इतने में उसे अपने बाबा की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, उठो बेटा, तुम्हारे पास समय बहुत कम रह गया है और अभी मंजिल बहुत दूर है। अपने गांव वालों की खुशहाली के लिए तुम्हें उठना होगा राजू। उस झल्ला जादूगर के खात्मे के लिए तुम्हें उठना होगा। और ये सुन के राजू जैसे ही अपनी आँख खोलता है, उसे अपने सामने एक पर वाला घोड़ा खड़ा दिखाई देता है।
वाव नानी, पर वाला घोड़ा।
हाँ बच्चों, राजू का मन हिम्मत से भर जाता है। वो उठकर उस घोड़े पर बैठता है और घोड़ा उसे उस सूखे जंगल में ले जाता है जहाँ वो सांप रहता है, जिसमें जादूगर की जिंदगी कैद होती है। उस सूखे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर राजू को वो सांप दिखाई देता है। राजू को अपने पास आता देख वो सांप अपने मुंह से आग छोड़ता है और वो चोटी से आग देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल जाती है। राजू फिर भी उस सांप का पीछा करता है। जैसे ही जादूगर को ये पता चलता है कि राजू उस सांप के बहुत नजदीक पहुंच गया है, वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अचानक उस सांप के पर निकल आते हैं और वो बादलों में उड़ने लगता है। राजू भी जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ता है और बादलों में उड़ते हुए सांप का पीछा करता है। जादूगर के सांप ने बहुत बार उड़ते हुए अपने मुंह से आग निकाली, राजू को राख बनाने की कोशिश की। और पता है, सांप के मुंह से निकलती हुई आग जैसे ही राजू तक पहुंचती, फूलों की माला बनकर राजू के ऊपर गिर जाती। अब राजू और सांप की दूरी बहुत कम हो जाती है और फिर राजू एक हाथ से सांप की गर्दन दबोच लेता है। और ऐसा होते ही जादूगर और उसकी पूरी जादुई दुनिया खत्म हो जाती है। राजू के माँ बाबा के साथ साथ गांव के सभी लोग, जिन्हें जादूगर ने पत्थर या जानवर बनाया था, अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और इसी तरह गांव में एक बार फिर से खुशहाली छा जाती है।
वाओ नानी, राजू हीरो।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बताओ?
कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
हाँ, और बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझे?
ये है।